सूरत के आगाज़ में मैंने थोड़ा सा आपके साथ जिक्र किया था, अब उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि मक्का में कोई शख्स मुनाफिक नहीं था। वजह साफ ज़ाहिर कि उस वक्त ईमान लाने की बुनियाद पर कुछ फ़ायदे तो मिलते नहीं थे, और उल्टा बैल मुझे मार वाली बात ही, कहीं कोई मार रहा है तो कहीं ओजड़ियाँ फेंक रहा है, तो कोई कांटे लगा रहा है, तो कहीं आग में गिरा रहा है। तो मुनाफिक कौन होता है? पहले तो ज़रा थोड़ी सी मुनाफिक की तारीफ़ें लिख लें। आप
हाँ
कहेंगे आप एक ऐसा स्कूल खोल के बैठ गए कि आप मुनाफिकों की भी तारीफें करते हैं, हैं? तो जो खुद अपनी इतनी तारीफें करे उसकी तारीफ हम क्यों ना करें। तो बेसिकली अगर आप तारीफ लफ्ज का रूट देखें ना, तो उर्फ है, उर्फ से मुराद मारूफ बात, जानी पहचानी। यानी मुनाफिक कौन होता है या निफाक क्या होता है, इस पर चंद बातें करके फिर आयतों के साथ लेके चलेंगे आपको। मुनाफिक कौन है कि जिसके दिल और जुबान के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, जुबान और दिल के दरमियान हम आहंगी कोऑर्डिनेशन का ना होना निफाक कहलाता है, मुनाफ़कत होता है। चाहे ये दीन के नाम पे हो, चाहे ये दुनिया के नाम पे हो। आप निफाक को समझिए एक मिसाल से। आप कोई बीज डालते हैं जमीन में, कुछ दिन के बाद उस बीज से फसल निकलेगी ना, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फल लगेगा, फसल तैयार होगी। इसी तरह जब दिल में ईमान का बीज डलता है ना, तो अमल का फल जरूर लगता है। ये नहीं हो सकता कि दिल में ईमान का बीज है, जो आज हमारे यहाँ एक बड़ा मारूफ जुमला है, नहीं फला दिल का बड़ा अच्छा है, दिल से वो बड़ा नेक है, बस नमाज नहीं पढ़ता। नहीं, दिल से बड़ा अच्छा है, बस जुबान का तेज है, झूठ है ये। ये तो गलत बात करती है आपने। जो बीज अंदर जाएगा वो फल जरूर होगा। मुनाफिक के दिल के अंदर ईमान का बीज नहीं लगता। दो वजूहात हो सकती हैं, या तो दिल की मट्टी बंजर है, दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्द कोहन का चारा, या फिर वो जो ईमान का बीज उसने डाला था ना, वो असल ईमान ही नहीं था, वो मुफाद का बीज था। मुनाफिक कौन होता है? मुफादात का बंदा, ना दुनिया छोड़ना चाहता है और ना दीन अपना सकता है। इस्लाम को जो पसंद है वो इसको पसंद नहीं, यानी इस्लाम की पसंद की चीज़ों को अपना नहीं सकता और अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। वो चलना चाहता है इस्लाम पे, लेकिन वो कहता है कि कोई रुकावट ना है फिर चलूँगा। जैसे हाईवे है, मैं ड्राइव करूँगा या करूँगी, लेकिन शर्त एक है कि रास्ते में कोई गाड़ी ना हो, और कहीं स्पीड ब्रेकर ना हो, कहीं राउंड अबाउट्स ना हो, कहीं पुलिस मैन ना खड़ा हो। आप में से कोई एक खुद या किसी ड्राइविंग करने वाले को जानती है कि जो ये कहे कि सिर्फ उस दिन ड्राइविंग करूंगी जिस दिन रोड पे कोई दूसरा ना हो और पुलिस ना हो, और गवर्नमेंट से कहें कि ये सारे इशारे तोड़ दे, कहीं करता है? मुनाफिक रहना इस्लाम की रोड पे चाहता है। इतनी जरूरत नहीं है उसमें कि कट्टर काफिर, इन लजीन कफर हो सवाओ, बस कह दिया जो पक्के काफिर। यानी ये डंके की चोट पे रहना मुसलमान चाहता है, लेकिन ये पाबंदियां नहीं बर्दाश्त करता। इसको स्पीड ब्रेकर्स अच्छे नहीं लगते, इसको राउंड अबाउट पे घूमना अच्छा नहीं लगता, इसको दूसरों को रास्ता देना अच्छा नहीं लगता, इसको अपनी लेन में रहना अच्छा नहीं लगता। अब याद रखिए कि जब भी बंदा इस्लाम पे आएगा, ये सारी बातें आपको ये सूरत की तफसीर ही है, लेकिन मैं आपको एक मजमून के तौर पे इसलिए दे रही हूँ कि इस सारी रूह को लेके जब कुरान की आयतें खोलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो आपके दिल पे उतर रही है। जब सच्चा इस्लाम दिल में आएगा ना किसी के भी, तो याद रखिए कुछ ना कुछ तब्दीलियां जरूर आएंगी। इस्लाम एक मुंजमद दीन नहीं है। जैसे आप देखिए कि एक बेजान चीज़ है ना, मिसाल देती हूँ, आर्टिफिशियल फूल पड़े रहते हैं, महीनों पड़े रहेंगे, लेकिन आप असली फूल रखेंगे, अगर आज खिले हुए हैं तो कुछ दिन के बाद अगर केयर नहीं करेंगे तो ये मुरझा जाएंगे। इसी तरह याद रखिए कि इस्लाम एक कल्ट नहीं है, इस्लाम एक मजहब भी नहीं है, इस्लाम एक बेजान चीज़ नहीं है कि आप ये कह दें कि बस जी इस्लाम हुआ था 1400 साल पैदा पहले पैदा, आज भी वैसे ही पड़ा है। ये जिंदा जावेद हस्ती है। जब ये इस्लाम आता है बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, निज़ाम बदलने लगते हैं, पसंद नापसंद बदलने लगती है, रात दिन बंदे के बदल जाते हैं, उसकी तरजीहात यानी उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। कल जो उसको खूब लगता था वो आज ना खूब लगने लगता है। کل تک جو ناخوب تھا وہاں اب دل لگنے لگتا ہے، انسان کے تصورات بدل جاتے ہیں، اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. اب جب کسی کے اندر سچا ایمان آئے گا، آپ سوچیں نا، ایک ہال ہے، ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم سب ایک فیملی ہیں، مثال ہے پچھلے 10 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم سب ایک جیسے تھے جیسے دنیا والے ہوتے ہیں. اب قرآن ہمارے دلوں پہ آ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ماشاء اللہ آپ سارے لوگوں کو قرآن ایک ہی جتنا سمجھ آئے گا؟ سمجھ بھی آنے کے باوجود جو اس کا پھل نکلنا ہے نا وہ مختلف ہے. کیوں؟ اس کا انحصار کس پہ؟ اگر آپ میں کوئی جواب دے دیں تو بونس گفٹ ہے. ہمارے سبق میں گزر گیا. جی آپ نفس ہے، میں کچھ اور اس کے قریب بھی بات سننا چاہ رہی ہوں. جی ایمان تو ایک ہی، دینے والا تو ایک ہی ہے. لفظ جملہ بولیں. جی بولیے. شاباش، کوشش کریں، آپ قریب ہیں. جی آپ بتائیے.
جو جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیز کرے گا ایسی چیزوں سے جس کا اسلام کے اوپر، جتنا اپلائی کرے گا اپنی زندگی کو.
ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک جملہ کل ہم نے بولا تھا 2-3 دفعہ، ایک سوال اٹھایا تھا کہ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھ کے بھی ہدایت کیوں نہیں ملتی. تو وہاں کیا بولا تھا، یاد ہے؟ بول دیں جس کو یاد ہے. جتنا تقویٰ اتنی ہدایت. بات آپ کی سب کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو سم اپ کریں کہ آپ سب کو دینے والا ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن آپ کے کانوں میں پڑ رہا ہے. کرسیاں، میز، ہال، ساؤنڈ سسٹم سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آواز آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ رہی. لیکن جس طلب کے ساتھ آپ بیٹھے نا، اصل میں طلب کا نام ہے. جس طلب سے آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو اتنا ملے گا. اگر آپ اس کو لے رہے ہیں اپنے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے لیے ملے گا. صرف علم بنا علم لے رہے ہیں تو علم کے لیے مل جائے گا، اور صرف دوسروں میں روب دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ملے گا، اور اگر روتے دل اور برستی آنکھوں سے سنتے ہیں تو اتنا ہی ملے گا. بالکل اسی طرح دیکھیے کہ جب قرآن آیا، اب ہوا کیا کہ ہم سب پچھلے 10 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اب ہمارے دل پر قرآن کی بارش پڑ گئی. اب نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ لوگوں کے اندر چینج آنی شروع ہو گئی. جیسے وہ بیج پہ بارش پڑتی ہے تو اندر کچھ نہ کچھ چینجز شروع ہو جاتی ہے نا، جیسے عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے. آپ بتائیے کہ ایک عورت جو نارمل حالت میں ہے، اور ایک وہ جس کے اندر پریگننسی شروع ہو گئی حالانکہ اس کو پتہ نہیں، اس کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. یہ چینجز کس کی ہیں؟ کہ اس عورت کے جسم کے اندر ایک وجود پلنے لگا ہے. اسی طرح اسلام جب کسی کے اندر آتا ہے نا، تو اس بندے کی شخصیت میں چینجز شروع ہو جاتی ہیں. اب کچھ میں ہو گئی، کچھ میں نہیں ہوئی، تو گڑبڑ، نقصان، کلیش، ٹکراؤ. کسی سوسائٹی میں جب اللہ کا پیغام آتا ہے اپنی اصل شکل میں، تو 2 گروہ بن جاتے ہیں، بلکہ 3. ایک وہ جو اس ہدایت کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، ابو بکر، عمر، بلال، علی، خدیجہ اور طلحہ اور زبیر کی طرح، وہ تو پھر کہتے ہیں جو کہتے ہو کرو. یعنی ایک گروہ کون سا بن جاتا ہے؟ اور ٹھکتے ہیں، اور کرو مجھے، میں تو ایسی رہوں گی. یعنی جن کے اندر اسلام آتا ہے تو وہ کیلوں کی طرح ٹھک جاتے ہیں اسلام پہ، مخالفتیں ان کو نہیں ٹکرات پیچھے کرتی. وہ کہتے ہیں دیکھو، اگر اسلام کی کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، اسلام کی کشتی ڈوبی تو ہم ڈوبیں گے، ہمیں نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے لیے تو ادھر آئے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے دل کو بدلنا ہے. وہ جمے ہوئے لوگ ہیں. لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سفہا. آج پڑھیں گے ہم سفہا، ٹھکے ہوئے لوگ، بیوقوف، فنیٹک، جذباتی، باتوں میں آ گئے ہیں. کوئی کہے گا یہ 4 دن کا بخار ہے، اتر جائے گا، یہ رمضان کا جوش چڑھا ہوا ہے ان کے دماغوں پہ، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی. یہ دیکھو دوسروں کے کہنے پہ اس نے اسکارف پہن لیا، یہ 4 دن بس سب ٹھیک ہو جائے گی، ذرا اس کو پیچھے کرو اس سے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہٹتے. ایک دوسرا گروہ ہے جو پھر کھل کے مخالفت کرتے ہیں، وہ چیختے ہیں، ہائے ہائے بچاؤ، یہ کدھر جا رہی ہیں، بھائی آپ کا ہم نے کیا لے لیا. اب آپ سوچیے نا کہ آپ اس سوسائٹی میں تھے اور اب آپ کے اندر چینجز شروع ہونے لگی ہیں، اب سوسائٹی کے کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے پکڑو پکڑو، بچاؤ، دیکھو کرو، یہ کرو، یہ کدھر چل پڑا، ان کو کیا ہو گیا، ان کو حاصل ہو. اب ایک دم آپ کو فیلنگ آئے گی کہ شاید میں نے ان کا کچھ لے لیا، کچھ دیکھو میرے پاس، میرے پرس میں ان کی چیز تو نہیں، اور اب ان کو خوف آ گیا. لیکن جب آپ غور سے دیکھتے ہیں نا، تو ان کو کس چیز کا دھڑکا ہے؟ اب آپ یہ جملہ جو میں بولنے لگی ہوں نا، یہ بڑے شعور سے سنیے گا. ہم نے نہ سمجھی میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کے بھی حق دے دیے ہوئے تھے. بات واضح. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई इज्जत देने वाला नहीं, तेरे सिवा कोई हाँ करने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली हम सिर्फ ना समझी में लोगों को करने वाला समझते हैं, फिर हम उनसे उम्मीदें बांधते हैं, सारी उम्मीदें बच्चों से, सारा डर शौहर का, सारा खौफ ससुराल का, बच्चों के ससुराल, पहले अपने ससुराल से डरते हैं फिर बच्चों के ससुराल से डरते हैं। नतीजा क्या होता है कि कुछ अल्लाह के हिस्से की चीज़ें भी हमने इंसानों को दी होती हैं। आप कहेंगे मैंने तो कोई नहीं दी, तो चंद मिसालें देख लें। आप देखिए कि आप इसी सोसाइटी में थी, आपकी 8-10 फ्रेंड्स थी, वो फ़ोन करती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैन आई कम एनी टाइम, आप उनको एक जुमला लिखती कहती थी एनी टाइम यू कैन कम, फिर वो आती हैं 1 घंटे के लिए आती हैं, 2-3 घंटे तो आप ऐसे ही लगा लेती थी चाय का कप, फिर दूसरा गिफ्ते भी तो पूरी करके भेजना था ना। अब वो जब 1 घंटे का कहकर 2-3 घंटे में आई और साथ ही आपको भी कह गई अच्छा अब रात को तुम आ जाना, अब सोचिए क्या वो दोस्त ये नहीं सोचेगी कि वल्लज़ी नामन अशद्दु हुब्बल्लिल्लाह की जगह वल्लज़ी नामन अशद्दुल्ली, ये मेरी दोस्त तो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत मेरे से करती है। अब क्या होगा, वो आपको फ़ोन करेगी अस्सलाम वालेकुम, कैन आई कम प्लीज़, तो आप कहेंगे यस जी, बस 10 to 2 नहीं। अब पहला झटका उसके शौहर पे लगेगा जैसे किसी का खुदा छीन ले। आज तक तो इसने कभी ये जुमला नहीं बोला था कि 10 to 2 आई एम अवेलेबल नॉट अवेलेबल। अच्छा मज़े की बात है कि दुनिया के जो काम होते हैं ना, हमारे जॉब कोई करता है या स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसमें लोगों को डेफिनेट पता है कि हम उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी नमाजों के वक्त पे लोग हमें तंग करें सताएं हम माइंड नहीं करते। नतीजा क्या निकला कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे ना उनके हक नहीं ले रहे, ये नोट करें, ये आपको गिल्ट होना है कल, आज ही लिख लें, आपको लोगों ने अब एक गिल्ट देना, और वो क्या कि आप हकूकुल बात नहीं पूरे करते, कतअ रहमियाँ करते हैं, सिला रहमियाँ करती हैं, आप घर नहीं अब देखती, आप बच्चों को नहीं देख रही, आप शौहर को नहीं देख रही, आप बूढ़े सास ससुर को नहीं देख रही, लोग आपसे अपने हक नहीं लेने आ रहे, वो आएंगे वो एक्स्ट्रा हक लेने जो उनको अल्लाह ने, आपने उनको अल्लाह के हिस्से में से दिए थे। बात वजह नहीं समझ आई, मुश्किल है कि जब दीन पे आप आते हैं तो शौरी तौर पे जब दीन पे आएंगे तो आप बंदों को बंदों की जगह पे रखेंगे, अल्लाह के हक को अल्लाह के हक पे रखेंगे, इसके नतीजे में सोसाइटी में शोर मच जाता है। आपको हैरत होगी आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुश्मनों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ना वो बहुत सारे हैं, आप भी सुनते रहते होंगे जो कुछ वो बोलते हैं, कभी आपकी शादियों पे, कभी कुछ दिस एंड दैट, लेकिन उन्होंने वो इल्ज़ाम आज तक नहीं लगाया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने लोग आप पे लगाते थे मक्का में, और वो क्या कि ये शख्स रिश्ते नाते तोड़वाता है, ये रिश्ते घरों में फूट डलवा रहा है, किसी की बीवी मुसलमान हो गई है तो इसकी बातों में आके अब उसके घर में लड़ाई पड़ी हुई है, किसी का मियाँ हो गया, किसी का जवान बेटा भाग गया, तो इसको आप इन आयतों में फसाद के नाम से देखेंगे, तो कुछ जम गए कुछ सरासर मुखालफत पे आ गए। एक तीसरा गिरोह होता है, वो कहता है बीच में रहो, बैन बैन ठीक है जो भी है जैसा भी होगा हम कर लेंगे, चलो ना नमाजें भी पढ़ लेंगे, फिर रसूमात भी अदा कर लेंगे, फिर दीन भी रख लें दुनिया भी रख लें। अल्लाह सुबहान तआला आज के इस पूरे सबक में हमें इस तीसरे गिरोह से मुलाकात करवाता है, और शुरू में हमारे सामने एक आईना रख दिया, आपने हिदायत के लिए कुरान शुरू किया ना, वदल्लिन्नास है ना, तो अल्लाह कहता है आईना देख लो, खुद को पूछो।